gusti. Chaitanya Chandraya Namo. I have been requested to speak in Hindi. I may try to speak in Hindi, but I am not so much accustomed to speak in Hindi. It may be mixed, some Hindi and some English maybe. So I think and I may be excused. आप सब अंग्रेजी समझ सकते हैं ना? हाँ, नहीं समझ सकते हैं। कुछ कुछ समझेंगे ना? मैं हिंदी में बोलूँगा, लेकिन मेरी भाषा तो हिंदी नहीं है। हाँ, तो कोशिश करूँगा बोलने के लिए। वो कुछ अंग्रेजी हो जाएगी, तो आप क्षमा करेंगे। ये मेरी विनती है। आपसे यहाँ आकर मैं ही बहुत खुश है। आप सब लोग आए हैं, भक्त लोग, भक्त सज्जन मातृ वृंद आए हैं। आपके भगवान की प्रति भक्ति है और भगवान की कथा कहानी सुनने के लिए कुछ आग्रह है, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं हमारे जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, उनकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर आप कृपा करके हमको कुछ सुअवसर प्रदान किए हैं कुछ हरिकीर्तन करने के लिए, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे हरिकीर्तन क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या सुफल मिलता है, ये आप सब जानते होंगे। मैं सोचता हूँ ये हरिकीर्तन ऐसी वस्तु है तो जानना मत जानना के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जो जानबूझकर करता है और जो नहीं जानकर भी कुछ हरिकीर्तन करता है उसको मिल जाता है, उसको फल मिल जाता है। ऐसी वस्तु है हरिनाम कीर्तन, इसमें ऐसी दिव्य शक्तियां हैं। श्रीमद् भागवत आप सुनते होंगे, कोई कई भागवत पाठ करते होंगे, तो श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत तो सार, सब वेद वेदांत उपनिषद का सार वस्तु है। व्यासदेव जी का अंतिम संकलन है श्रीमद् भागवत, वो सब वेद उपनिषद से सार लेकर के वो भागवत में रखा है। सर्व वेदांत तो सार ही श्रीमद् भागवत उच्यते, तदसाम चतुर्थस्य नान्यस्य द्रथिकोचित, ये कहा गया है द्वादश स्कंद भागवत में। जो वो भाग्यवान व्यक्ति है भागवत में आग्रह प्रकाश किया है, भागवत के जो अमृत जो अमृत मिलता है, अमृत को स्वाद लेता है, वो भाग्यवान है। जो भागवत के रसामृत आस्वादन कर सकता है वो कोई दूसरे शास्त्रों को आग्रह नहीं करेगा, ये बातें हैं। फिर भी श्रीमद्भागवतम प्रमाणम बलम प्रेमा पुमर्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमीदम तत्र आदर न पर। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के ये मत है। आप चैतन्य महाप्रभु को जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण भगवान, ओ कृष्ण महाप्रभु के रूप से आए थे 5 वर्ष पहले। ओ महाप्रभु ने ये मत प्रकाश किए है श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमरम प्रेमा पुमर्थ महान, अमर प्रमाण विशुद्ध प्रमाण मूलक ग्रंथ है श्रीमद भागवत, भूल भटका नहीं है। ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वास्व है, कृष्ण विभु हैं, भगवान हैं, हम सब कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए। भागवत ओ भगवान कृष्ण की वाणी अवतार है, भगवान कृष्ण के तुल्य है, इसलिए भागवत का आश्रय लेना ही चाहिए। ये बात ही बताए गए हैं। भागवत जो नहीं मानता, भागवत लेना माने से जुबन सुनो ता शास्त्रा छे जन्म जन्म प्रभु जम, ये बात बताए गए हैं। जो भागवत को स्वीकार नहीं करता वो मृत्यु जवन है, उसको जन्मदंड मिलेगा, एक जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतर जन्मदंड मिलेगा। ये बातें हम सब भागवत को स्वीकार करते हैं, सब भागवत को स्वीकार करते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भागवत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए हैं, मूल श्लोक लिखे हैं, उनका अर्थ अनुवाद दिए हैं, भाष्य दिए हैं। आज पश्चिम जगत में भागवत का प्रसार हो रहा है, इसलिए इनकी कृपा है, मेरी गुरु महाराज की कृपा है, तो भागवत पश्चिम जगत में प्रकाश पाई। तो आप वो भागवत में बताया गया है, यथा गदु विर्जतम उपयुक्तम जदृच्छया अदान तो महिमात्म गुणम कुर्ज्यान मंत्रोपी उदाहुत, ये षष्ठ स्कंद भागवत में बताया गया है। एक रोगी लोग है, रोग है, तो रोग दूर करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाएगा, वैद्य के पास जाएगा, जिसको रोग के ज्ञान है और औषध के ज्ञान है, रोग निर्णय कर सकते हैं, ये रोग के लिए क्या औषध है ये निर्णय कर सकते हैं, तो रोगी का ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है ये मेडिसिन ले लो, प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, और उस दुकान है, दुकान पर जाइए, वहां से इसको खरीद कर ले लिए टैबलेट, इसको खा लीजिए। तो टैबलेट में क्या शक्ति है, क्या गुण है, रोगी का ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टर की बातें पर विश्वास स्थापन करके जो वो बटीका टैबलेट खाता है तो वो रोग निराकरण हो जाता है, तो उनका ज्ञान अज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसे ओ हरिनाम ऐसे है, ज्ञान अज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जो नाम लेता है नहीं जानने पर लेता है, श्रद्धा हृदय बा भ्रुगवरो नरुमात्रो तारो एक कृष्ण नाम, श्रद्धा विश्वास कर लेता है, अरे श्रद्धा नहीं है ऐसे ही लेता है, उसको ही फल नहीं जाता है। ये उदाहरण षष्ठ स्कंद भागवत में दिया गया है। अजामिल उपाख्यान है, अजामिल एक बड़ा पापी था, सब पाप किया था, कुछ पाप को नहीं छोड़ा था। जमराज हैं, जमराज के बारे में, नरक के बारे में वो पंचम स्कंद भागवत में वर्णना किया गया है। जमराज का मंत्री चित्रगुप्त है, वो सब लोग का जिसको बोलते हैं एक वर्ष बुक पुस्तक रखता है, वो उस व्यक्ति क्या करता है, क्या पाप कर्म करता है, क्या पुण्य कर्म करता है, सब लिखता है, सब लिखता है। मर जाने जब मर जाएंगे वो जमदूत आएंगे, वो जमपुर को ले जाएंगे आत्मा को, वहां वो पुस्तक वो निकालेगा, वो बोलेगा जमराज को ये व्यक्ति ये किया है, ये पाप क्या है, पुण्य कर्म क्या है, जमराज धर्मराज हैं विचार करेंगे, तो वो इसको पाप के लिए क्या दंड मिलेगा, कौन नरक में डाला जाएगा, उसके बाद क्या जन्म मिलेगा, ये जमराज के दरबार में विचार होता है, इस होता है। तो अजामिला का वो बिग बुक बड़ा पुस्तक था, बहुत पाप किया था। एट द एज ऑफ 88 वो मरने जाता था, वो मृत्यु सज्जा में लेटा है, तीन जन जमदूत आकर के पधारे वहां, देखने को बहुत भयंकर है, उनके आत्मा को ले जाएंगे। उनके एक सुकृति थी, उनका जो छोटा सा सर्वकनिष्ठ यंगेस्ट सन बेटा था, उनका नाम रखा था नारायण, ये उनकी सुकृति थी। और बहु बार नारायण वो बेटा को बुलाता था, नारायण यहाँ आ जाइए मेरे पास बैठिए, मेरे पास ये खाना खा लीजिए, मेरे पास सो जाइए, ये बहु बार नारायण को पुकाराता था। नारायण भगवान का नाम है, लेकिन वो बेटा को पुकारता था डायरेक्टली, नारायण भगवान को नारायण को नहीं पुकारता था। तो ये मौत के समय जब वो जमदूत आकर पघारे, उनको देख करके वो खूब भीत त्रस्त हो गया, वो उनका बेटा को पुकारा, नारायण मेरे पास आइए, कहाँ है तुम? वो नारायण नाम उच्चारण करते हुए चार विष्णु दूत आकर वहां पघारे। ये भगवान नारायण के नाम के इस महिमा है, और उनका सब पाप तत्क्षणात ध्वंस हो गया, वो पाप मुक्त हो गया। तो विष्णु दूत ने जम दूत को बोले, देखो उनको अब तुम छू नहीं सकेंगे, वो निष्पाप हो गया है, ले नहीं सकेंगे, जब छूंगे तो उनके हाथ गदा थी, देखा एक गदा में आपको प्रहार करेंगे, आपको सिर को तोड़ देंगे, ये बोले। तो ये उपाख्यान है। तो वो पुत्रों को संकेत करके भगवान का नाम पुकारा, तो पाप खे हो गया, इसे भगवान का नाम है। तो उनका ज्ञान नहीं था, लेकिन ये फल मिल गया। वो जमपुर को नहीं गया, उनका मृत्यु नहीं हुआ, उनका आयुष और बढ़ गया, ये बातें लिखा है। ये भगवान के नाम कीर्तन के ऐसे फल है। एक कौली युग में दूसरे धर्म नहीं है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिर अन्यथा, ये तो वेद की वाणी है ना, उपनिषद की वाणी है ना। हरे नाम और नाम ही वो केवल कलो नास्ते वो नास्ते वो गतिर अन्यथा, कलि युग में अन्य गति नहीं है, अन्य गति नहीं है, अन्य गति हरे नाम ही केवल केवल हरे नाम को आश्रय करना है, ये युग धर्म है, कलि युग का धर्म है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जुगा बता रहे थे, युग धर्म प्रचार किए हैं, स्थापित किए हैं, सब लोग ये नाम आश्रय करना ही चाहिए। विशेष करके कलि युग में भगवान का क्या अवतार है, कलि युग में कोई अवतार नहीं है, ये शास्त्र सिद्धांत है, शास्त्र में लिखा है, कलि युग नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कलि काल नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ही शास्त्र मर्म, ये शास्त्र में लिखा है। महाजन आचार्य लोग ये कहते हैं कलि काल में नामावतार है, भगवान नामावतार है, भगवान कृष्ण नामावतार है, दूसरे अवतार नहीं है। कलि युग के अंत में कल की अवतार आएंगे, कलि युग 432,000 ईयर्स, केवल 5,000 ईयर्स गया है, ये प्रारंभ है, कुछ अवतार नहीं है, कलि युग अंत में आएंगे कल की, अभी नहीं है। अभी कलि युग में नाम अवतार, कलि युग नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण नाम अवतार रहे हैं, तो उनके नाम के शरणम आना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलि युग ये महामंत्र है, ये कलि युग तारक ब्रह्म नाम है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रकाश किए हैं, वो वेद में है, सब लोग यही नाम को आश्रय करेंगे, सब समय नाम स्मरण करेंगे, नाम गान करो, नाम कीर्तन करो, नाम स्मरण करो, ये भगवान के साथ युक्त होने के बहुत ही आसानी मार्ग है, सहज सरल मार्ग है। भगवान कृष्ण गीता में बताए हैं, अनन्य चेता सततम जमांस्मृति नित्यसो तस्यांश्लो पार्थ नित्य युक्त योगिन, ये बात बताए हैं। अनन्य चेता सततम जमांस्मृति नित्यसो तस्यांश्लो पार्थ नित्य युक्त योगिन। हाँ, जो व्यक्ति केवल मुझे स्मरण करता है, अंग्रेज में बोलते हैं एक्सक्लूसिवली थिंग्स ऑफ मी, अनन्य चेता इसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली थिंग्स ऑफ मी, केवल मुझे स्मरण करता है, हर समय हर मुहूर्त स्मरण करता है, एक मुहूर्त विस्मृत नहीं होता है, ये अनन्य चेता अस्तु जमा स्मरण तस्यां सुलभ आई एम विद हिम, मैं उनके पास हूं, मैं उनके पास हूं। कृष्ण को पास रखने के लिए ये खूब सरल सरल मार्ग है, उनके नाम स्मरण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग के लोग कुछ साधन नहीं कर सकेंगे, कलयुग पाप अधर्म के बंधु, अधर्म पाप के युग है, सब लोग पाप करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, चेतन है अचेतन भाव में सब लोग पाप करते हैं, कोई पाप से मुक्त नहीं है। ये पाप से मुक्त होने की क्या तरीका है, ये नाम करना है। नहीं बोला अजामिलो इतना बड़ा पापी था, वो उनका बेटा को पुकारा जिसका नाम नारायण था, नारायण भगवान का, देखो सब पाप ध्वंस हो गया, वो मुक्त हो गया, वो जमपुर को नहीं गया। अब देखिए कलयुग के लोग क्या करेंगे, कलयुग पाप का युग है, मोस्ट डिग्रेडेड एज, सब लोग पाप करते हैं, आप नहीं जानते हैं पाप क्या है, पाप तो वेद में लिखा है, कुनिषिद्ध है, मिथ्या बात बोलना, चोरी करना, परदारा करना, किसको हत्या करना, पर संपत्ति धन ले आना, चोरी करना, ये सब तो पाप है, सुरा पीना, मादक द्रव्य सेवन करना, ये पाप है, प्राणी हत्या करना, मांस खाना, ये पाप है, धूम्रपान बीड़ी पान सिगरेट पान करना, वाइन सुरा, ये सब ये चलता, ये सब पाप है, तो इलिसिट सेक्स अवैध जून उसंग, ये सब पाप है, दीव तो क्रीड़ा है, जुआ खेल है, ये सब तो पाप है, ये तो सब लोग करते हैं, पाप का चार स्तंभ है इस कलयुग में, इससे कैसे एटमोस्फियर, ये होल एटमोस्फियर वातावरण दूषित हो गया है, ऐसे है, ऐसे युग में हम हैं। आयुषो तो लाइफ स्पैन बोलते हैं, आयुषो तो कलयुग के लोग को 100 वर्ष है, कितने आदमी 100 वर्ष जिंदा रहते हैं, पाप के पाप जो करते हैं इसलिए वो उनका आयुषो जो करते हैं ह्रास हो जाए, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या साधन करेंगे आप, क्या हिमालय के कोई गिरी पर्वत के गुम्फा पर बैठ करके ध्यान धारणा समाधि करेंगे या प्राणायाम करेंगे, वो कर नहीं सकेंगे, कलयुग लोग कहीं नहीं कर सकेंगे, ऐसे बात ऐसे नहीं, भगवान ने ऐसे कृपा में ऐसे कृपाणु है, ए जानते हैं कि कलयुग लोग कर नहीं सकेंगे, तो कलयुग के लोग के लिए भगवान ने सोचा कि देखो मैं ही जाऊंगा, उनको सर्वोच्च सिद्धि दूंगा, भगवान के नाम दूंगा, वो केवल भगवान के नाम कीर्तन स्मरण जप करेंगे तो खूब आसानी से भगवान को पा जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, अंत में मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे 5 वर्ष पहले, ये हमको ये दिए हैं, ये शास्त्र में लिखा है, जब संकीर्तन करेंगे तब पाप संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण स्तुति सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमामृत कृष्ण कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति प्रेमामृत समुद्रे मज्जन ये शास्त्र में बताया गया है। जब आप संकीर्तन करेंगे बहुत भक्त एकत्र होकर के उच्च स्वर रे उच्च कीर्तन करेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये उच्च संकीर्तन करने से ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में दिव्य ध्वनि तरंग जो वायुमंडल में खेल जाएगा वो वायुमंडल वातावरण विशुद्ध हो जाएगा, नहीं तो दूषित वातावरण कभी नहीं विशुद्ध होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। फिर जो हृदय दूषित हुआ है हृदय में दो मैला है वो मैला कैसे साफ करेंगे आप? डॉक्टर को मालूम नहीं है, कोई जड़ वैज्ञानिक को मालूम नहीं है, वो बाह्य बाहर को मैला साफ कर देंगे तो अंदर में हृदय के अंदर में जो मैला है ये मैला क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह मदो मात्सर्य ये मैला है। इसको साफ करने की तरीका क्या है? ये तरीका है हरि संकीर्तन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, चित्त शुद्धि हो जाएगा, हृदय भी शुद्ध हो जाएगा और भक्ति साधन सरल हो जाएगा। ये ऐसी बात है। अब क्या कर सकें? ये नाम कीर्तन नाम जप नाम स्मरण ये युग धर्म है। भगवान प्रवर्तन किए हैं धर्म में तो साक्षात भगवत प्रणीतम भगवान धर्म नीति प्रणयन करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करता, असुर नहीं करता, देवता लोग नहीं करता है, मुनि ऋषि नहीं करता है, सिद्ध लोग नहीं करते हैं, उच्चारण विद्याधर ये कोई नहीं करते हैं। भगवत प्रणीतम धर्म तो सख्या भगवत प्रणीतम धर्म मूलो ही भगवान सर्व वेदमय हरि ये भागवत में बताया गया है। तो धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ये गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। इसको हमको स्वीकार करना है, नहीं तो जरूर हम पाप करेंगे और अंत में जमपुर जाएंगे, वहां दंड मिलेगा। मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, 84 लक्ष जीव जोनी है, जड़ जानव लक्षाणी थावरा विंस लक्ष भी कृमेरु रुद्र संख्यकार पक्षिणांग 10 लक्षकम त्रिंश लक्षाणी पशव 14 लक्षाणी मानवा ये पद्म प्राण में बताया गया है। 9 लाख टाइप्स जड़ जीव है अक्वाटिक एनिमल्स, 20 लाख टाइप्स स्थावर पहाड़ पर्वत पेड़ ये स्थावर जोनी है, ये 20 लाख प्रकार है, 11 लाख टाइप्स कृमि कीट पतंग है, 10 लाख टाइप्स पक्षी है, 30 लाख टाइप्स पशु है, 4 लाख टाइप ह्यूमन बींग्स मानव है। ये चेतना के विकास के अनुसार ये 84 लक्ष जीवजोनी है, 84 लक्ष प्रकार के शरीर है, ये जीवों का शरीर है। ये कैसे मिलता है? एक पेड़ होता है एक जीव तो एक कृमि कीट होता है एक पक्षी होता है तो एक एक्वाटिक एनिमल होता है, जलजीव होता है, तो एक पशु होता है और एक मानव होता है। मानव में तफात है, सब मानव समान नहीं है, सब मानव के चेतना समान स्तर में नहीं है, ये विभिन्नता है। ऐसे क्यों क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसको समझना चाहिए। गीता में, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, यज्ञार्थात कर्मण नत्र लोकयं कर्म बंधन, ये बात है। आपका जो कर्म है, कर्म करते हैं, वो तो जो यज्ञ पुरुष के लिए नहीं होगा, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण के कहते हैं, उनके लिए नहीं होगा तो कर्म बंधन होगा, कर्म का प्रतिक्रिया मिलेगा, ए कर्म फल के अनुसारी दूसरे जन्म होगा। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, जस्त इंद्र गोपं अथवा इंद्रंग हो सो कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति, कर्माणि निदहन्ति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदं आदि पुरुषं तमो वदामि। देखो, कर्म के फल के अनुसार एक जीव इंद्र बनता है, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा बनता है, और कर्म फल के अनुसार एक इंद्र गोप बनता है। इंद्र गोप एक छोटा सा कीड़ा है, लाल दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इंद्र गोप। ये कर्म फल के अनुसार सो कर्म बंधन रूप फल भाजन मातनोति, कर्माणि निदहन्ति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदं आदि पुरुषं तमो वदामि। कर्म फल कैसे ध्वंस होगा, इसका तरीका क्या है, भक्ति पद के भक्ति पद को नहीं आने से कर्म फल ध्वंस नहीं होगा, भजन नहीं करने से कर्म फल ध्वंस नहीं होगा। ये होता है भजन पद पर जब आ जाएंगे, इसको भजन पथ और भक्ति पथ बोलते हैं, भगवान की सेवा पथ बोलते हैं, कृष्ण की सेवा पथ बोलते हैं, इसको भक्ति पथ भजन पथ बोलते हैं। कर्मान निदहन्ति किंचु तो भक्ति भाजन, तो कर्म फल ध्वंस नहीं होगा। यज्ञ कर्म इसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण के लिए विष्णु के लिए जो कर्म किया जाता है इसको यज्ञ कर्म कहते हैं। यज्ञ कर्म नहीं करेंगे आपके इंद्रिय के प्रीति के लिए कर्म करेंगे, आपके प्रीति के लिए कर्म करेंगे, आपके परिवार के प्रीति के लिए कर्म करेंगे, या खूब बड़ा हो तो आपको देशवासी के प्रीति के लिए कर्म करेंगे। ये जो कर्म करो ये कर्म बंधन है, ये कर्म जब भगवत प्रीति यज्ञ कर्म नहीं होगा तो कर्म बंधन है। ये कर्मानुरूप जन्म होता है, जो इसे कर्म करता है ऐसे जन्म मिलता है। इसलिए एक पशु होता है, एक पक्षी होता है, एक कीड़ा होता है, एक पतंग रहता है, एक पेड़ होता है, एक पहाड़ होता है, एक लता क्रीपर होता है, एक एक्वाटिक एनिमल ऐसे होता है। आप देखिए बहु उदाहरण है, आप आज मानव जन्म पाए हैं तो मानव जन्म का उद्देश्य है हरि भजन करना। लब्धा सुदलवी दो बहु संभवानते मानस्य मर्थद मनित्य मतीय धीर, 11th कैंटो भागवत एकादश स्कंद भाव में बताया जाता है। लाख लाख जोनी में भ्रमण करके बाह करने के बाद दुर्लभ मानव जोनी मिलता है, स्वल्प काल के लिए मिला है। देखो मृत्यु आ जाएगा, को जानता कौन जानता, किसको मालूम है आज मृत्यु आ जाएगा किसका, ये होता है स्वल्प काल के लिए। लेकिन एक दुर्लभ मानव जन्म में परमार्थ लाभ होगा, कृष्ण भक्ति लाभ होगा, दूसरे जन्म में नहीं होगा। इसलिए मानव जन्म दुर्लभ है, भक्ति लाभ करने के लिए भजन करने के लिए हम आए हैं, भजन नहीं करेंगे तो फिर नीच जन्म मिल जाएगा, ये बात है। इसलिए अब देखे आप अभी मानव जन्म आए हैं, यहाँ रहते हैं, कौन रहते हैं, कौन राजा होता है, कौन प्रजा होता है, कौन गरीब होता है, कौन धनी होता है, कौन अंधा होता है, कौन जिसको बोलते लिंगड़ा होता है, कौन रोगी होता है, कौन सुस्त होता है, कौन विद्वान होता है, कौन मूर्ख होता है, कैसे ऐसे क्यों होता है, ये सब कर्म फल है। कर्म फल के ये है तो कर्म फल कैसे ध्वंस होगा, भक्ति पथ को नहीं आने से, भजन पथ को नहीं आने से कर्म फल नहीं होगा। चल महाभारत में लिखा है, भागवत में है, नहुष नहुष सुमवंश का राजा था और आयु का पुत्र था, हाँ वेरी पावरफुल किंग, वो शक्तिशाली राजा था, पृथ्वी को शासन करता था, इतने प्रसिद्ध राजा था तो देवता लोग उनको निमंत्रण करते थे स्वर्ग लोग को, जो दैत्य लोग आक्रमण करते थे असुर लोग उनको हटाने के लिए उनको निमंत्रण करते थे, इससे प्रसिद्ध राजा थे नहुष। तो ऐसे पुण्य कर्म किया, नहुष स्वर्ग के राजा बना, देवराज इंद्र बन गया। जब देवराज इंद्र बन गया उनका बहुत घमंड हो गया, गर्व हो गया, अभी मैं स्वर्ग का राजा हूं। हाँ वो क्या किया, ब्राह्मण लोग को लाया करके उनके जो सेविका था इनको वहन कराया। एक रोज अगस्ती मुनि को सेविका वहन कार्य में नियुक्त किया था और उनका पैर अगस्ती मुनि के शरीर पर लग गया। तो अगस्ती मुनि क्रोध प्रकाश कर, क्या करता है तुम, का बहुत घमंड हो गया है, ऐसे बात कर्म करता है, सांप बनो। उनको अभिशाप दिया तो सांप पतन हो गया, इंद्र था अभी सांप शरीर पा गया, स्नेक बॉडी, देखो ये हो जाता है, इंद्र था तो अभी सांप बन गया, ऐसे कर्म किया, ये कर्म के फल है। हाँ आप देखिए, एक इंद्र था, बृहस्पति है इंद्र के स्वर्ग के गुरु है, देवताओं के गुरु है, वो इंद्र एक दिन वो गुरु को अवमानना किया, डिसरेस्पेक्ट, तो गुरु अभिशाप दिया शुकर बन जाओ, तो पतन हो गया और स्वर्ग राज्य से पतन हो गया, यहां शुकर बन गया, शुकर बन करके विष्ठा ईटिंग स्टूल। हाँ एक शुकरी भार्या, बहुत से बच्चे, हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑल वर ईटिंग स्टूल, सब विष्ठा भोजन करते थे, बहु वर्ष वो शुकर शरीर में रहा। एक रोज ब्रह्मा कृपा किया, देखो ये इंद्र था भूल गया, हाँ अभी शुकर बन के विष्ठा खाता है, शुकरी लेकर के रहता है, बहुत से बच्चा पैदा करता है, सब विष्ठा खाते हैं। तो ब्रह्मा वो पहुंच गया, उनको बोला ए क्या करता है तुम, तो मैं एक रोज स्वर्ग के राजा थे भूल गया है। ब्रह्मा के बात कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं उनके कान में नहीं घुसा ब्रह्मा की बात। देखो ब्रह्मा सोचा वो मेरी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि उनका ये शरीर और शरीर के जो संबंधी है, उनके भार्या और बेटा बेटियां हैं, इसके प्रति बहुत ही आसक्ति है, अटैचमेंट बोलते हैं अंग्रेज में, ये जब नहीं टूटेगा, महाजन साधु की बातें कभी आपके कर्ण में प्रवेश नहीं करेगा, ये बातें हैं, ये बातें हैं। तो ब्रह्मा को मालूम है ब्रह्मा महाजन है, तो ब्रह्मा पहले क्या किया, उनके सब जो बेटे थे, हाँ बेटा बेटियां थे हंड्रेड्स हंड्रेड्स, उनको सब मार डाला। जब मार डाला देखा ये क्यों है, मेरा बेटा बेटिया को मार डाला, खूब क्रोध प्रकाश किया, गर्जन किया, उनका जो दाम था ऐसे उसको तोड़न करके ब्रह्मा के ओर धपड़ा, उनको आक्रमण करे, ब्रह्मा पर आरोप है, उनको क्या करेगा। ब्रह्मा बोला ए तुम क्या करते हो, तुम इंद्र थे अभी क्या करते हो, शुकर बनकर कर बीस ठका था, फिर भी ब्रह्मा की बात नहीं सुनता, क्योंकि ब्रह्मा सोचा आसक्ति उनका जो है संपूर्ण नहीं टूटा, क्योंकि उनके भार्या है, फिर बेटा बेटियां पैदा करेगा। तब उसके बाद ब्रह्मा उनके भार्या को मार डाला, तब बेटे बेटियां मर गए, उनकी स्त्री मर गई। तब बोला देखो, ब्रह्मा को बोला क्या बोलते हो, बोला तुम इंद्र थे स्वर्ग का राजा थे अभी क्या करते हो, ये शुकर बनकर बीष्ठा खाते हो। तो उनको बोला क्या तुम चाहते हो मुझे स्वर्ग जाने के लिए, हाँ तुम इंद्र था, वो बोलता वहां बीष्ठा मिलता है, तो बोलता है जो बीष्ठा मिलेगा मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ये बीष्ठा के प्रति इतनी आसक्ति है, वहां शुकरी मिलता है, तब नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यहां बिस्ता क्या मिलेगा? अमृत है, स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में बहुत सुंदर अप्सराएं लोग हैं, सुगरी क्या है? ये एक बात है। देखो ऐसे कर्म किया जो इंद्र था, राजा था स्वर्ग का, वो सुगर बन गया। आप क्या सोचते हो? आप जब हरि भजन नहीं करेंगे, यज्ञ कर्म या भगवान विष्णु और कृष्ण के प्रीति के लिए कर्म नहीं करेंगे, दूसरे जन्म क्या होगा कभी सोचते हो? कहीं नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। ये तो शास्त्र की बातें हैं, भगवान की बातें हैं। हाँ, नलो कुबेर मणिग्रीव की बातें हैं। वो स्वर्ग राज्य में थे, कुबेर के दो पुत्र थे, वो ऐसे कर्म किए, पाप कर्म किए, लंगा होकर वो दो सिविनली गर्ल्स हैं उनके साथ जुलूम किया करते थे। नारद मुनि साधु वो रास्ते, उस रास्ते में जाते थे, उनको लज्जा नहीं होता था। नारद मुनि अभिशाप, हे तुम क्या करते हो यहाँ, ये उच्च लोक में आकर ये क्या करते हो? तो योग्य नहीं यहाँ रहने के लिए, वृक्ष बनो। तो वृक्ष शरीर लेकर के उनका पतन हो गया, मर्त्य लोक में वृक्ष शरीर धारण करके 36,000 ईयर्स। इस बात इस कर्म के अनुसार होता है, जैसे आप कर्म करेंगे इसलिए नेक्स्ट बार होगा। जब भजन नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होंगे, इसको जो यज्ञ कर्म बोलते हैं, वो यज्ञ कर्म नहीं होगा तो कर्म फल ध्वंस नहीं होगा। ये कर्म का कुश है, कर्म हमें छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट गिव अप वर्क, गिव अप वर्क यू कैन नॉट मेंटेन योर सेल्फ। तो कर्म तो नहीं छोड़ सके, तो कौशल सीखना चाहिए। कर्म करेंगे लेकिन कर्म का प्रतिक्रिया नहीं होगा, ये होता है यज्ञ कर्म। एक पौराणिक आख्यान है, एक वेद जो ब्राह्मण था, वो वेद मालूम था, वेद ज्ञान लाभ किया था, लेकिन वेद का तात्पर्य उनको मालूम नहीं था। वो रास्ते पर जाता था, एक रोज देखा रास्ते में बहुत सुंदर सुस्वादु खाद्य वहां रखा है, वहां लड्डू जिलपी रसगुल्ला गुलाब जाम पलाव, बहुत सुस्वादु खाद्य रखा है। रास्ते पर रखा है, क्या बात है? वो ब्राह्मण लोग खूब लोभी होते हैं, खाने क्या लोभ है, तो उनको खा लिया। और उनके कुछ संगी थे, बंधु थे, उनको बोला भाई आ जाइए आ जाइए, ए देखो कैसा खाद्य है, ए मेरी पलाटेबल डिश है, सुस्वादु लड्डू जिलपी है, सब खा गए। किस दिन के बाद, किस वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो वो जमराज जमपुरक गए, जम दूत आए उनको ले गए वहां। तो जमराज का दरबार में उनका विचार हुआ, चित्रगुप्त उनका पुस्तक निकाला, बोला ये कर्म किए हैं। तो जमराज निष्पत्ति दिया, देखो भूत जोनी, भूत जोनी मिलेगा, दैट मीन्स यू रिमेन एज घोस्ट, नेक्स्ट बार फिर घोस्ट बार यू रिमेन एज घोस्ट। भूत जोनी, भूत होना, वो स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं भूत लोग, घोस्ट सूक्ष्म सटल बॉडी नो ग्रस बॉडी, ऐसे मिलेगा ए निष्पत्ति। सो वेदज्ञ ब्राह्मण था, बोला क्या क्यों ऐसे होगा, हम क्या किए हैं क्यों ऐसे होगा? जमराज बोला तुम ये जो खाद्य खाया था वो एक व्यक्ति घोष्ट और सीपर भूत पूजा करता था, उनके लिए वो खाद्य प्रस्तुत करके अर्पण किया था, तुम खा लिया, उनके बंधु को भी खाने को दे दिया, तो ये कर्म का ये प्रतिक्रिया है, तो आपको भूत जो नहीं मिलेगा तो कोई इससे इसको मिटा नहीं सकेंगे। तो उनके बाद वो धर्मराज को जिज्ञासा किया, अच्छा इससे मुक्ति पाने की कुछ मुक्ति पाने का कुछ मार्ग है, किस उपाय है, हमको बताइए हम कैसे भूत जोनी से मुक्ति मिलेगा। धर्मराज बोला जमराज देखो तुम तो जरूर भूत बन करके रहोगे, मरु प्रदेश में डेजर्ट में रहोगे, कभी जब सौभाग्यवशत एक वैष्णव वहां आ जाएंगे, विष्णु भक्त और कृष्ण भक्त वैष्णव आ जाएंगे, तो वो को विपासित हो जाएंगे, क्षुधित हो जाएंगे, तब आप तुम जब उनके कुछ उनकी कुछ सेवा कर सकोगे, उनके आशीर्वाद मिल जाएगा, तब मुक्ति मिलेगा, नहीं मुक्ति मिलेगा, ये मुक्ति की तरीका है। तो वो ब्राह्मण उनके संगी भूत बनकर एक मरु प्रदेश में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे लिव देयर। तो जमराज की बातें उनका मालूम है, तो फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश एक वैष्णव वहां आ गए हैं। वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव हरि भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वैष्णव का बेस है, वैष्णव तिलक करते हैं, शिखा रखते हैं, माथा सब ढेर है, कंठी माला लेते हैं, जपामाला लेते हैं, हरे कृष्ण नाम भजन करते हैं, भगवान की वाणी प्रचार करते हैं, सब जगह घूमते हैं, होल वर्ल्ड सारा पृथ्वी पर वे घूमते हैं, भगवान के नाम भगवान की वाणी प्रचार करते हैं। ये भगवान ये वैष्णव का कर्म है, ये उनका जो बोलते हैं आत्मनिवेदन, कंप्लीट डेडिकेशन, उनका शरीर उनका मान का बाप का आत्मा सब भगवान के शरीर पर अर्पण किए हैं, ये वैष्णव लोग हैं। उनके दूसरी दूसरा काम कुछ नहीं है, ये वैष्णव लोग हैं। वो भी मरु प्रदेश को जाते हैं, दैव क्रम में सौभाग्यवश आ गए हैं, तो वो उनको वो मन में रखे हैं, जमराज ने यह कहा था ना। सो मरु प्रदेश जो डिजार्ट है उन वहां स्कोर्चिंग हीट ऑफ द सन खूब तीव्र, सूर्य ताप है, बालू है, पेड़ नहीं है, छाया नहीं है, पानी नहीं है, तो वैष्णव को बहुत क्षुधा तृषा हुई और क्रांति हुई, बहुत तीव्र सूर्य ताप है, बालू खूब हट हो गया है, वो पैर में ये जो फुटका निकला गया है ये सब हो गया है, क्लेश हुआ। तो वो भूत लोग देखेंगे ये वैष्णव आए हैं, तो उनमें कोई एक भूत एक पेड़ के रूप धारण किया, तो वैष्णव उनके नीचे बैठ गया। वो ब्राह्मण जो था उनका नेता था, वो एक ब्राह्मण के रूप धारण किया, वहां करके बोला आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूं? तो वैष्णव बोल देखो मैं बहुत खुदी तो हूं, हंग्री हूं एवं थर्स्टी हूं, आप ठंडा पानी जब लाएंगे कुछ फल लाएंगे तो बहुत ही उपकार होगा। तो ले आया कुछ ठंडा पानी, ले आया एक ग्लास फल लाया, वैष्णव उनको भगवान कृष्ण को अर्पण किया, भोग लगाया, प्रसाद बनाया, उनका जो रेमनांस था भुक्तावशेष उनको दे दिया, तुम खाओ, ये वैष्णव की कृपा है। तो भूत लोग वो तो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, वो नहीं खाते, वो केवल आघ्राण करते हैं, स्मेलिंग करते हैं, जो आघ्राण किए तो उनका भूत जोनि से मुक्ति मिल गया, दिव्य वेरी ब्यूटिफुल जिसको बोलते हैं अति सुंदर दिव्य शरीर उनको मिल गया। उनकी उसके बाद वो सब आकर के वैष्णव के चरण पर प्रणाम किए, वैष्णव खूब आश्चर्य हुआ, क्या हुआ था तुम्हारा, ये सब वृतांत तो बताए, ये कहानी है, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, देखो साधु कृपा कृष्ण कृपा मिलने से कर्म से मुक्ति मिलता है, कर्म फल ये है, अनादि कर्म फल वो अनादिकाल से कर्म फल भोग कर सकते हैं, एक कर्म के अनुसार ही हमको ऊंच नीच ज्योनि मिलता है, स्वर्ग नरक प्राप्त होता है, साधु कृपा कृष्ण कृपा से कर्म से मुक्ति मिलता है, साधु कृष्ण की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है, साधु जो बोलते हैं गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता बीज। साधु की बात सुनने पर जानता है ओ मैं कौन हूं, मैं कृष्ण दास हूं, साधु के बात सुनने से ये मालूम होता है मेरा परिचय क्या है, मैं कृष्णदास हूं। साधु बोलता है तुम कृष्णदास हो, हाँ जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तुम कृष्णदास हो। तो साधु की बात सुनता है तो बाल बोलता है मैं कृष्णदास हूं। ऐ मैं तो कृष्णदास नहीं बना है, मैं तो मायादास बन गया है। लाख लाख जन्म बिता गया माया के की सेवा करके लिए, अभी कृष्ण की सेवा नहीं किया। ये साधु की बात सुनने पर मालूम होता है, तब साधु शंकर के जो मालूम होता है कृष्ण के पास रोता है, रोता है, हैं? क्यों मैं आपके चरण पर शरण नहीं लिया है, इसलिए मैं दुख पाता हूं। केंद्र बोलो हे कृष्ण आमी तब दास तुम्हार चरण छड़ी होइनु सर्वनाश। ये रोता है और बोलता है कृष्ण मैं आपका दास हूं, आपके चरण पर आपके चरण का अनादर किया हूं, आपके चरण पर शरण नहीं लिया हूं, आपकी सेवा में निजुक्त नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं ये भवाब्धि भवसागर ये संसार जो है एक भयंकर सागर की तरह है, हाँ ये भवसागर में मैं दुख पाता हूं। आप कृपा करके मुझे आपके दास बना लीजिए, आपके चरण पर मुझे आश्रय दीजिए, चरण के एक धूली के सदृश मुझे चिंता कीजिए, मुझे शरण में आश्रय दीजिए, ये प्रार्थना करता है। तो कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनते है, तो गुरु साधु कृपा कृष्ण कृपा से भक्ति पद का आ जाता है, भजन करता है। ऐसे भजन करने से उनका कर्म फल ध्वंस हो जाता है और अंत में वो भगवत के भगवान के धाम पर जाता है, ये सीखा है। तो मैं कह करके मेरी बात ही मैं समाप्त करता हूँ। आप सब विज्ञान लोग हैं, बुद्धिमान हैं, विचारवंत हैं, आप इसको सोचना चिंता कीजिए और भक्ति पथ को आ जाइए, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाइए, ये मानव जीवन को सफल बनाइए और फिर हम दूसरे जन्म नहीं पाएंगे, ये भौतिक जगत को हार नहीं आएंगे, ये दुखाड़ है। यहाँ केवल जन्म मृत्यु दरा व्याधि दुख है, सब दुख भगत है, सुख नहीं है। हम भगवान के धाम पर जाएंगे, वो सचिदानंदमय धाम है, वैकुंठ जगत है, भगवान के धाम है, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं, सब सुख आनंद, नित्य सुख आनंद है, वो सचिदानंदमय धाम है, सन्मय चिन्मय आनंदमय धाम है। वहां जन्म नहीं, वहां जरा नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वहां व्याधि नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद, दिव्य आनंद सुख है। भगवान की सेवा में निजुक्त होकर दिव्य आनंद में सुख राज्य में रहेंगे, ये अंतिम लाभ होगा, ये हमारा जीवन के लक्ष्य है। ये जीवन ऐसे लक्ष्य आप साधन कर सकेंगे, ये मानव जीवन में हो सकता है और दूसरे जन्म में नहीं हो सकता है। इसलिए मानव जन्म दुर्लभ जन्म है और कली युग के लिए सरल पंथा आसानी पंथा है, भगवान के नाम के शरण में आना, नाम तत्वविद वैष्णव गुरु स्वीकार करना, गुरु से मंत्र दीक्षा लेना, उनके अनुगत्य अंडर हिज गाइडेंस अंग्रेज में बोलते हैं, भगवान की सेवा में लग जाना। नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाको अपना काजे, टेक शेल्टर ऑफ होली नेम, नामाश्रय करो और जो काज करते हो वो काज कैसे भगवान के प्रीति के लिए होए, ये गुरु बताएंगे, गुरु के निर्देश में भगवान के प्रीति के लिए वो काज में लग जाइए, तभी मानव जीवन सफल बन जाएगा, अंत में भगवान के धाम जाएंगे। और अब कभी और ये मृत्यु संसार को नहीं लौटेंगे, जन्म मृत्यु चक्र में कभी नहीं घूरेंगे, भगवान के धाम पर रह करके दिव्य नित्य आनंद सुख लाभ करेंगे, ये जीवन सफल बनेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद है।